दिसंबर 1948 है, कैलिफोर्निया का सैन बर्नार्डिनो। मैकडॉनल्ड्स ड्राइव इन के बर्फ से ढके पार्किंग लॉट में एक कार दाखिल होती है। कार में बैठा शख्स गाड़ी को पार्क करता है, हॉर्न बजाता है और इंतजार करने लगता है। वो छतरी जैसे दिखने वाले इस रेस्टोरेंट को बड़े ध्यान से देखने लगता है। बिल्डिंग के शीशे से उसे स्टाफ के लोग नजर आते, लेकिन वो लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे।
कोई लड़की क्यों नहीं आ रही है? कार ऑप्स का है।
वो शख्स फिर से हॉर्न बजाता है। स्टाफ के लोग तब भी ध्यान नहीं देते।
बहुत हो गया।
वो अपनी कार से उतरता है और बर्फीले रास्ते से होते हुए बिल्डिंग में घुसता है। कटोरे जैसे दिखने वाले रेस्टोरेंट में जाते ही उसे गोल मटोल सा चश्मा लगाए एक शख्स दिखता है जो सर्विस विंडो पर खड़ा हुआ है। ये मैकडॉनल्ड है। मैक अपने भाई डिक के साथ मिलकर ये ड्राइव इन रेस्टोरेंट चलाते हैं। उन्होंने 3 महीने का वक्त लेकर इस रेस्टोरेंट की रिमॉडलिंग की और अब वो इसे चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
मैकडॉनल्ड्स में स्वागत है। मैं आपकी सारे के सारे कार हॉप्स कहाँ चले गए हैं? मैं 5 मिनट से इस ठिठुरती सर्दी में इंतजार कर रहा हूँ।
हमारे यहाँ अब कार हॉप्स काम नहीं करते।
क्या?
जैसा कि साइन पर लिखा है, यहाँ अब सेल्फ सर्विस है।
वो साइन बोर्ड को देखता है और एकदम चौंक जाता है।
ओके, फिर मुझे रिब्स दे दो।
हम अब रिब्स नहीं बेचते।
शख्स आंखें चढ़ाता है और फिर से चिड़चिड़ा हो जाता है।
रिब्स नहीं बेचते? फिर क्या बेचते हो?
हैमबर्गर 15 सेंट में, चीज स्लाइस के साथ एक्स्ट्रा 4 सेंट, सॉफ्ट ड्रिंक 15 सेंट में। हमारे पास पाई, पोटेटो चिप्स, कॉफी और मिल्क भी है। तुम इसे मेन्यू कहते हो?
एक बात बता दूं, मैं तुम्हारे इस 15 सेंट के बर्गर पर भरोसा नहीं करने वाला हूँ। तुम जरूर खराब मांस लाते होगे, तभी तो इतना सस्ता बेच रहे हो।
नहीं नहीं, हम एकदम बढ़िया क्वालिटी का फ्रेश बीफ यूज करते हैं। अब हमें कार हॉप्स को पैसे नहीं देने पड़ते, इसीलिए हम इसे सस्ता बेच पाते हैं।
शख्स मानने को तैयार नहीं है।
पता है, तुम लोग इस शहर के सबसे बढ़िया रिब्स बेचते थे, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं है ये क्या है। मैं कहीं और खा लूंगा।
वो शख्स झुंझुलाते हुए अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। उसने ऐसा पहला इंसान होने का मौका खो दिया था जो आने वाले समय के स्वाद को चखता। मोहावी डेजर्ट के पास बने इस मैकडॉनल्ड्स का सेल्फ सर्विस बर्गर जॉइंट भले ही 1948 में लोगों को अचंभे में डाले, लेकिन यह अचंभा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मैकडी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इतनी तेजी से कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बीच ये करोड़ों लोगों के खाने के तरीकों को बदल देगा। अब ये बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी। वंडरी से मैं हूं संदीप आर्या और ये है बिजनेस वॉर्स। आजकल के वक्त में बमुश्किल ही होगा कि आपका ठिकाना किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से दूरी पर हो। दुनिया भर में ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हर साल $500 ट्रिलियन की कमाई कर लेते हैं। ये हर रोज हजारों लाखों लोगों को खिलाते हैं। ये इंडस्ट्री बेहद बेदर्द है और सबसे बड़ी बन फाइट हुई दुनिया के सबसे बड़े बर्गर ब्रांड्स मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के बीच। 6 पार्ट की इस नई सीरीज में हम आपको ले चलेंगे बर्गर्स की जंग के मैदान में, जिसने फास्ट फूड को दुनिया में एक नया आयाम दिया। ये कहानी है बेहिसाब पैसे, बिजनेस के नए तरीके और बढ़ती हुई वेस्ट लाइंस की। और इसकी शुरुआत होती है न्यू हैम्पशायर के 2 भाइयों से, जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए वेस्ट की तरफ रुख किया और अनजाने में फूड रेवोल्यूशन की शुरुआत कर डाली। ये है पहला एपिसोड, वेस्ट का सबसे तेज बर्गर। ये 1992 का मार्च है। एक कार सैन बर्नार्डिनो में 14वीं स्ट्रीट की तरफ जा रही है। कार में फ्लोरिडा के जैक्सनविल के रहने वाले 2 लोग बैठे हैं। कार को चला रहे हैं करीब 50 साल के मैथ्यू बर्न्स, साथ में बैठे हैं उनके दामाद कीथ क्रेमर। क्रेमर डेटोना बीच ड्राइव इन के मालिक हैं और वो सैन बर्नार्डिनो आने के लिए महीनों से काफी बेताब है। पिछले साल उन्होंने एक अमेरिकन रेस्टोरेंट मैगजीन में रिकॉर्ड तोड़ने वाले एक हैमबर्गर रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ा था। अब वो खुद जाकर वो देखना चाहते हैं। जैसे ही वो हाईवे स्ट्रीट पर पहुंचे, क्रेमर ने मैकडॉनल्ड्स का एक बड़ा सा साइन देखा। साइन के ऊपर एक शेफ बना हुआ था जिसका चेहरा हैमबर्गर के बन की तरह बना हुआ था। यही वो, रुको। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, उन्हें बिल्डिंग की तरफ एक लंबी लाइन दिखी। बर्न्स को उनकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।
इन सब लोगों को तो देखो, ये कम से कम 100 लोग होंगे।
क्रेमर ने कुछ और भी नोटिस किया।
सिर्फ इतना ही नहीं, देखो ये लाइन कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है।
लंच टाइम की भीड़ जैसे ही कम हुई, क्रेमर सर्विस विंडो के पास गए।
हेलो, मैं कीथ क्रेमर हूँ। मैं जैक्सनविल में अपना ड्राइव इन चलाता हूँ और मैं ये देखने आया हूँ कि आप कैसे काम करते हैं। कहना पड़ेगा कि मैं बहुत इंप्रेस हूँ।
विंडो के पीछे खड़ा शख्स मुस्कुराता है।
मिलकर अच्छा लगा मिस्टर क्रेमर। मैं मैक मैकडोनल्ड हूँ। मैं अपने भाई डिक के साथ इसे चलाता हूँ। आपने कहा कि आप यहाँ इतनी दूर फ्लोरिडा से आए हैं बस हमें देखने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
मैक क्रेमर को किचन में ले जाते हैं।
हम रेगुलर ड्राइव इन ही थे, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन हमें लगा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो बेहतर हो और तेज काम करे, तो हमने कार हॉप्स को निकाल दिया और सेल्फ सर्विस शुरू कर दी। रोलर स्केट्स वाली सुंदर लड़कियों को फायर करने से नौजवान लड़कों का आना तो कम हो गया, अब यहाँ ज्यादातर फैमिलीज ही आती हैं। हमने मेन्यू में भी काट छांट की और बस बर्गर शेक्स और फ्राइज ही रखे हैं। ये ऐसा खाना है जिसे हाथ से ही खा सकते हैं, तो प्लेट चम्मच वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस पेपर रैपर्स और पेपर कप से ही काम हो जाता है। छोटे से मेन्यू से सर्विस भी जल्दी हो जाती है।
मैक क्रेमर को ग्रिल के पास ले जाते हैं और कहानी सुनाना जारी रखते हैं।
हमारी किचन में सबकी कोई ना कोई खास जिम्मेदारी है। मेरे भाई डिक ग्रिल संभालते हैं, उनके पास वाला लड़का हैमबर्गर तैयार करता है और उसके बगल में जो लड़का है वो बस फ्रेंच फ्राइज तलता है, और ये जो लड़का है ये उन मल्टी मिक्सर मशीनों से शेक बनाता है।
क्रीमर बहुत इंप्रेस है।
हाँ, ये तो किचन की मशीन की तरह है, एक असेंबली लाइन की तरह है। एक बात पूछूं, इस तरीके से ज्यादा पैसे कमाते होगे? नहीं,
मैक को थोड़ा अटपटा लगा।
आपको बताने में कोई हर्ज नहीं, पहले हर साल हम $2,00,000 कमा लेते थे, अब हम $3,00,000 से ज्यादा कमा लेते हैं और हमारी लागत पहले से एक तिहाई है।
घूमने के बाद क्रेमर बर्न्स के पास कार में वापस आ गए। बर्न्स ने उन्हें बड़ी उम्मीदों भरी नजरों से देखा।
बताओ कैसा रहा? ये अब तक का सबसे शानदार हैमबर्गर बिजनेस है। जब हम जैक्सनविल जाएंगे तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही रेस्टोरेंट खोलूंगा।
लेकिन इससे पहले वो घर जाते हैं। क्रेमर और बर्न्स का एक और अपॉइंटमेंट था। ये था हॉलीवुड में इन्वेस्टर जॉर्ज रीड के साथ। क्रेमर ने सुन रखा था कि रीड ने एक ऐसा ब्रॉयलर बनाया था जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट से एक घंटे में सैकड़ों हैमबर्गर बना सकता था। 2 घंटे में वो लोग रीड की वर्कशॉप में पहुंच गए। वहां सब एकदम अस्त व्यस्त था। कंक्रीट के फर्श पर टूल्स बिखरे पड़े थे और दीवारों पर पीले पड़ रहे पिनअप पोस्टर लटके हुए थे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक अलग सा दिखने वाला स्टेनलेस स्टील का ब्रॉयलर बहुत सलीके से रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई 3 फीट है और लंबाई 2.5 फीट। 12 वायर वाली बास्केट एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखी हुई थी जो ब्रॉयलर के अंदर बाहर जाती थी। रीड ने वो मशीन दिखाई।
ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये इंस्टा बर्गर ब्रॉयलर है। ये वेस्ट की सबसे बढ़िया और सबसे तेज बर्गर बनाने वाली मशीन है। मैं कहूंगा कि दुनिया की सबसे बढ़िया, मैं साबित कर सकता हूँ।
रीड ने 2 वायर बास्केट खोली और बीफ की 2 कच्ची पैटीज उनमें रख दी। इसके बाद उन्होंने बर्गर बन के स्लाइसेस बास्केट के बीच में रख दिए और रीड ने कुछ स्विच चालू किए और एक बटन दबा दिया। कन्वेयर बेल्ट ने एक झटके में वो पैटीज वाली बास्केट अंदर ले ली और बर्न्स ब्रॉयलर में डाल दी। क्रेमर और बर्न्स ने देखा कि पैटीज मशीन में जाकर खड़ी हो गई। 1 मिनट के बाद बास्केट बाहर आई और 2 पके हुए एकदम जूसी बर्गर पैन में आ चुके थे। रीड ने अभी अभी टोस्ट हुए बन निकाले और बर्गर तैयार किए।
हे लीजिए, तैयार हो गए आपके इंस्टा बर्गर। वाह, ये तो वाकई बहुत जल्दी बन गया और अच्छा भी है, आसानी से बनने वाला भी है। कोई भी इस मशीन से एक बढ़िया बर्गर बना सकता है।
जैसे ही क्रेमर और बर्न्स घर की तरफ बढ़े, उन्हें एक प्लान सूझा। वो मैकडॉनल्ड्स की ही तरह एक ड्राइव इन खोलेंगे और उसमें बर्गर बन बनाने के लिए वो रीड की इंस्टा बर्गर ब्रॉयलर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें यकीन था कि टेस्ट, सादगी और स्पीड के इस लाजवाब कॉम्बिनेशन से वो पेट ही भर के पैसा कमा सकते हैं। ये 1953 का अगस्त है। जैक्सनविल बीच के बुलेवर्ड बीच पर कुछ मजदूर क्रेमर के नए ड्राइव इन का काम निपटा रहे हैं। क्रेमर रोड के किनारे सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं। करीब 28-29 साल का एक शख्स उन्हें बीच में टोकता है।
सुनिए, यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ, कीथ क्रेमर। हेलो, डेव एजर्टन। क्या यहाँ डेरी क्वीन खुल रही है?
नहीं।
काफ़ी हद तक डेयरी क्वीन ही लग रही है। मुझे दिलचस्पी हुई क्योंकि मैं मायामी के लिए डेयरी क्वीन की फ्रेंचाइजी खरीदने वाला हूँ। ओके, ये डेयरी क्वीन नहीं है, ये एक नए तरीके का हैमबर्गर रेस्टोरेंट है। इसका नाम होगा इंस्टाबर्गर।
नए तरीके का रेस्टोरेंट? हाँ, क्रेमर ने अपना प्लान बताया। फास्ट सर्विसिंग, छोटा मेन्यू और कम कीमत, लेकिन ये बस शुरुआत है। जैसे ही ये रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगेगा, वो इंस्टाबर्गर की फ्रेंचाइजी भी बेचेंगे।
ये काफी बड़ा होने वाला है।
फ्रेंचाइजी का जिक्र सुनते ही एजर्टन की आंखों में चमक आ जाती है।
ओह, ये तो रेस्टोरेंट के लिए बहुत बढ़िया आइडिया है। कैसा रहेगा अगर मैं डेयरी क्वीन के बारे में भूल जाऊं और इंस्टाबर्गर की फ्रेंचाइजी ले लूं?
क्रेमर ने इतनी जल्दी फ्रेंचाइजी बेचने का नहीं सोचा था, पर वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते।
हाँ जरूर, चलिए बात करते।
बढ़िया, लेकिन क्या मैं पहले एक सजेशन दूं?
बिल्कुल,
आपको इसे इंस्टा बर्गर किंग बुलाना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
ये अप्रैल 1954 है। डेव एजर्टन बिना सोचे समझे फैसला लेने वालों में से हैं, और अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने सही दाव लगाया। वो एक झटके में आइसक्रीम से बर्गर पर पहुंच जाते हैं और तुरंत ही नई फ्रेंचाइजी प्लान को सेट भी कर लेते हैं। एजर्टन को मायामी एयरपोर्ट के पास इंस्टा बर्गर किंग खोले हुए एक महीना हो गया और वो एक खास विजिटर का इंतजार कर रहे हैं। वो हैं लोकल स्टेक हाउस के मालिक जिम मैक्लेमोर। एजर्टन चाहते हैं कि मैक्लेमोर स्टेक हाउस बेच दें और उनके पार्टनर बन जाएं। शाम 6 बजे के बाद मैक्लेमोर शांत इंस्टा बर्गर किंग में दाखिल होते हैं। मैक्लेमोर के सिर पर बाल नहीं है और उस पर जोर शोर से लाइट चमक रही है। एजर बड़ी फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ते हैं।
खाने के लिए शुक्रिया जिम, बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ।
कुछ मिनट बाद एजर्टन एक ट्रे में हैमबर्गर, फ्राइज और वनीला शेक लाते हैं। जैसे ही मैक्लेमोर बर्गर चबाते हैं और शेक का घूंट लेते हैं, एजर्टन अपना आइडिया पेश कर देते हैं।
मैंने इंस्टा बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी पूरे मायामी के लिए ली थी। मैंने अपना सारा पैसा इसी में लगा दिया है। मैंने पूरे शहर में खोलना चाहता हूँ। जितनी ज्यादा जगहों पर यह खुलेगा, हमारा बिजनेस भी उतना ही फैलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं आपको मुनाफे का 50% दूंगा।
मैक्लेमोर को आइडिया पसंद आया। वो हमेशा से रेस्टोरेंट ही चलाना चाहते थे।
मैं इंटरेस्टेड हूँ। वैसे बता दूं कि बर्गर बहुत बढ़िया है। मुझे आपका अकाउंट देखना होगा। आपके पास प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट तो होगा ही ना?
एजर्टन झेप जाते हैं।
अभी तो नहीं, सारी रिसीट और चेक मेरे ऑफिस में किसी बास्केट में पड़ी हुई है। लेकिन इतना पता है हमें कि हम प्रॉफिट में ही हैं। जहाँ तक है, मुझे सेल्स में 28% से ज़्यादा मुनाफा हो जाता है।
बढ़िया, लेकिन मुझे अकाउंट तो देखना ही होगा। वो अपनी बास्केट मेरे अकाउंटेंट को दे दो, वो हिसाब लगा लेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा मैं।
कुछ ही हफ्तों बाद मैक्लेमोर वापस आए। उनके अकाउंटेंट ने रिसीट वगैरह देखी और एक फैसले पर पहुंच गए।
पता है तुम्हें डेव, तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, बल्कि तुम पैसा डुबा रहे हो, बहुत सारा पैसा।
एजर्टन की नजरें जमीन ताकने लगती है।
यानी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे?
नहीं, दरअसल मैं इन्वेस्ट करूंगा। तुम्हें इस बिजनेस को शुरू करे बस 2 ही महीने हुए हैं और मुझे इस पर भरोसा है। बाकी मैं नंबरों में अच्छा हूं और लगता है कि तुम्हें इसकी मदद की जरूरत होगी।
1955 के आखिर में दोनों ने मिलकर मायामी में 3 और इंस्टा बर्गर किंग रेस्टोरेंट खोल लिए, लेकिन बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। चारों लोकेशन घाटे में चल रही हैं। मैक्लेमोर और एजर्टन कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग उनके सेल्फ सर्विस ड्राइव इन से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। दरअसल एक और दिक्कत है, मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के हैमबर्गर जॉइंट और उनके प्रॉफिट के बारे में हर कोई बात कर रहा है। अमेरिका में कई एंटरप्रेन्योर मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से इंस्पायर होकर उनके जैसे सर्विस ड्राइव इन खोल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये नेशनल चेन बनेंगे। इनके कंपेटिटर हैं टेक्सास में वाटरबर्गर, कैलिफोर्निया में जैक इन द बॉक्स और हैमबर्गर हैंडआउट। लेकिन एक सबसे बड़ा खौफ अपने पैर पसार रहा था और इस खौफ को लाने वाला था शिकागो का एक सेल्समैन जो मिल्क शेक की मशीनें बेचता था। वो मैकडॉनल्ड्स को नेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी में, और उसके पास ऐसा प्लान है जिससे वो बर्गर किंग का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा।
Bum-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bid
ये जुलाई 1954 है। सैन बर्नार्डिनो में मैकडॉनल्ड्स के पार्किंग लॉट में एक जवान लड़की अपने पीले कलर की फोर्ड क्रेस्टलाइन कन्वर्टिबल में बैठी है। उसके बालों का रंग एकदम भूरा है। वो अपना हैमबर्गर खोलती है और एक बाइट लेती है। वो एकदम मजे से अपने जूसी बीफ, केचप, मस्टर्ड और सावर पिकल का लुत्फ उठाती है और अपना मिल्क शेक उठाती है। तभी अचानक से उसके सामने एक परछाई पड़ती है और वो देखती है कि उसके पास एक आदमी खड़ा है। करीब 50 साल का होगा। उसने बालों को अच्छी तरह से कंघी किया हुआ था और सूट भी प्रेस करा हुआ था।
आपको परेशान करने के लिए सॉरी मिस, मेरा नाम रे क्रॉक है। मैं एक ट्रैफिक सर्वे कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ अक्सर कितनी बार?
वो लड़की थोड़ा चौकन्ना होकर क्रॉक की तरफ देखती है।
ट्रैफिक सर्वे, ये क्या बकवास है? जब भी इस शहर में आती हूँ, और अक्सर आती हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है।
क्रॉक ने दफा हो जाने के हिंट पर ध्यान नहीं दिया।
और आप यहाँ क्यों खाती? हैमबर्गर की वजह से। ये बहुत शानदार होते हैं। कोई और वजह? सर्विस तेज है, जो कि और अच्छी बात है क्योंकि मैं जल्दी में रहती हूँ। ओके, वक्त देने के लिए थैंक यू मिस।
क्रॉक उस लड़की पर चांस नहीं मार रहे थे, लेकिन वो ट्रैफिक सर्वे भी नहीं कर रहे थे। वो दरअसल शिकागो के एक सेल्समैन हैं जो मिल्क शेक की मशीन बेचते हैं। वो कई महीनों से मैकडॉनल्ड्स के बारे में सुन रहे हैं। ड्राइव इन के कई मालिक उन्हें कॉल कर रहे थे, उनकी मल्टी मिक्सर मशीन खरीदने की सोच रहे थे, क्योंकि ये वही मशीन है जो मैकडॉनल्ड्स यूज करता है। जिज्ञासा के साथ उन्होंने अपने बही खाते में देखा कि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने 8 मल्टी मिक्सर खरीदे। किसी एक ड्राइव इन के लिए जरूरत से ज्यादा है? तो इसका कारण ढूंढने के लिए वो कैलिफोर्निया तक चले आते और उन्हें उम्मीद है कि इस ड्राइव इन से उनकी शेक मशीन की बिक्री में बहुत बढ़त हो सकती है। क्रॉक सर्विस विंडो पर गए और अपने बारे में बताया।
हेलो, क्या मॉरिस या रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर हैं?
जी, मैं ही मॉरिस हूँ, लेकिन आप मुझे मैक बुला सकते हैं।
ओ, मिलकर अच्छा लगा मैक। मैं प्रिंस कैसल सेल से रे क्रॉक हूँ।
मैक को कुछ भी समझ नहीं आया।
आपने मल्टी मिक्सर के बारे में तो सुना ही होगा।
मैक के चेहरे पर कुछ चमक आई।
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अपनी मशीन को काम करते देखना चाहते होंगे, है ना?
अगले आधे घंटे ब्रदर्स ने क्रॉक को किचन दिखाई। उन्होंने सब कुछ समझाया। वो एक मिनट में दर्जनों शेक बनाने के मल्टी मिक्सर का कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी फ्राइज को गोल्डन और क्रिस्प कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह। क्रॉक को ये बहुत पसंद आया।
मैंने हैमबर्गर बेचने वाली कई जगह देखी है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं इसकी बात ही कुछ और है। ये बंद कब होता है?
देर से, कभी कभी रात 9 बजे के बाद भी।
मुझे कहना पड़ेगा मैक, आप जो करते हैं उसे लेकर काफी ओपन है। अब ये दीवारें ही कांच की बनी है, तो हम कुछ भी छिपा नहीं सकते ना। मुझे आप दोनों से कुछ और भी बात करनी है। क्या हम आज डिनर पर मिल सकते हैं?
और उस रात वो तीनों मैकडॉनल्ड्स से थोड़ी दूर एक स्टेक हाउस में मिलते हैं। अब क्रॉक समझ गए थे कि ये ब्रदर्स उनकी मल्टी मिक्सर्स की सेल्स को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। वो ख्वाब देख रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में अपनी ब्रांच खोल रहा है और वो सारे ड्राइव इन मल्टी मिक्सर्स खरीद रहे होंगे।
आप में कोई तो खास बात है, आपको इसे और फैलाना चाहिए। मुझे पता है कि आपका रेस्टोरेंट पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो जाएगा।
आपने ऐसा कहा, हमें अच्छा लगा, लेकिन हम यहाँ रहकर खुश हैं। हम और रेस्टोरेंट का झंझट क्यों पालें, जबकि हमें इसी रेस्टोरेंट से वो सब कुछ मिल रहा है जो हमें चाहिए।
क्रॉक को उनमें जुनून की कमी देखकर बुरा लगा। क्रॉक हमेशा बड़ा सोचने और सफलता के पीछे भागने वाले शख्स हैं। वो हमेशा नई डील की तलाश में रहते हैं। उन्हें पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं हो।
लेकिन आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, आप फ्रेंचाइज ही शुरू कर सकते हैं।
डिक ने मुंह बना लिया।
हमने वो भी ट्राई किया था। हमने कैलिफोर्निया और फिनिक्स में फ्रेंचाइजी शुरू की थी, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। हम अपना वक्त फ्रेंचाइजी पर नजर रखने में नहीं गंवा सकते ना।
क्रॉक मैकडॉनल्ड्स की डील को अपने हाथों से जाता नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने आइडिया दिया कि वो फ्रेंचाइजी को मैनेज करने के लिए किसी और को रख लेंगे। डिक थोड़ा असमंजस में दिखे।
लेकिन करेगा कौन?
क्रॉक आगे बढ़े।
खैर, मेरे बारे में क्या ख्याल है?
कुछ हफ्तों बाद डील हो गई। क्रॉक पूरे अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बेचेंगे, वहां पर जहां मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने अब तक राइट्स नहीं बेचे। बदले में क्रॉक को यह पक्का करना होगा कि सभी नए मैकडॉनल्ड्स में मैकडी ब्रदर्स का ऑपरेशन ही फॉलो हो। इतना ही नहीं, सभी में ब्रदर्स की बिल्डिंग का नया डिजाइन भी फॉलो होना चाहिए, जिसमें जमीन से निकलते दो बड़े बड़े गोल्ड नाकों और रेस्टोरेंट की झुकी हुई छत के बराबर पहुंचने पर मिल जाए। कोई भी चेंज करने पर ब्रदर्स से परमिशन लेनी होगी। ब्रदर्स को फ्रेंचाइजी से होने वाला सालाना कमाई का आधा हिस्सा देना होगा। क्रॉक का 1.4% हिस्सा होगा। क्रॉक के लिए यह हिस्सा एक तिनके के बराबर था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मल्टीमिक्सर मशीन की बढ़ती सेल से उन्हें मन चाहा फायदा मिल जाएगा। क्रॉक का पहला कदम था शिकागो सबर्ब्स के डेस प्लेन्स में मैकडॉनल्ड शोकेस खोलना। लेकिन मार्च 1955 में डेस प्लेन्स रेस्टोरेंट का काम पूरा होने ही वाला था कि क्रॉक के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ब्रदर्स ने शिकागो में मैकडॉनल्ड्स खोलने के राइट्स किसी लोकल कंपनी को पहले से ही दे दिए थे और वो क्रॉक को यह बात बताना भूल गए थे। आग बबूला हो चुके क्रॉक ने डिक मैकडॉनल्ड को कॉल किया।
तुमने कुक काउंटी फ्रेंचाइजी बेच दी और मुझे बताया भी नहीं। मेरा घर है वहां, मैं वहां अपना पहला रेस्टोरेंट बना रहा हूं।
अरे शांत हो जाओ। लेकिन उनके साथ हमारी डील आपसे अग्रीमेंट करने से पहले हुई थी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बाकी का पूरा अमेरिका तो है ही ना।
बात यह नहीं है, और तुम्हें भी पता है, मैंने डिक प्लेन्स मैकडॉनल्ड्स में अपना सब कुछ लगा दिया और तुम कह रहे हो कि मैं अब इसे खोल नहीं सकता। डिक, डिक सुन रहे हो?
फोन कट गया। डिक ने फोन रख दिया। एक घंटे बाद क्रॉक के ऑफिस में एक टेलीग्राम आया। ये मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने भेजा था। इसमें लिखा था, डील खत्म हुई। क्रॉक ने ब्रदर्स का गुस्सा खत्म होने का इंतजार किया। इसके बाद क्रॉक ने सब कुछ बेहतर करने के लिए वेस्ट कोस्ट मल्टीमिक्सर के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। रिप्रेजेंटेटिव के उम्दा काम से डील फिर से क्रॉक के पाले में आ गई। क्रॉक ने ब्रदर्स की मदद से आइसक्रीम कंपनी को मना लिया था कि वो उसकी शिकागो वाली फ्रेंचाइजी $25,000 में उन्हें बेच दे। हालांकि ये कीमत क्रॉक के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्रॉक ने डेस प्लेन्स रेस्टोरेंट में पहले से ही बहुत पैसा लगा दिया था। क्रॉक के पास उधार लेकर पैसा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। क्रॉक कर्ज में डूब चुके थे, ठीक उसी तरह जिस तरह बर्गर किंग के डेव एजर्टन और जिम मैकलमोर मायामी में। इन तीनों एंटरप्रेन्योर को लगा था कि ये फूड रेवोल्यूशन लाने वाले, और अब ये नाजुक स्थिति में। अगर इन तीनों ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये दिवालिया हो जाएंगे। अगले एपिसोड में इंस्टा बर्गर किंग के मैकलमोर को सबसे खराब हैमबर्गर जॉइंट में एक प्रेरणा दिखाई देती है। रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स के कंट्रोल के लिए मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से झगड़ते हैं और दो बर्गर राइवल्स के बेस्ट आइडिया को चुराने के बाद एक नया चैलेंज सामने आता है।
वंडरी से मैं हूं संदीप आर्या और आप सुन रहे हैं बिजनेस वॉर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी बातचीत के बारे में जरूरी नोट, हम ठीक से नहीं कह सकते कि क्या कहा गया था, लेकिन ये बातचीत हमारी बेस्ट रिसर्च पर आधारित है। बिजनेस वॉर्स की ये सीरीज मूल रूप से डेविड ब्राउन ने होस्ट की थी। इस वर्जन का होस्ट मैं हूँ संदीप आर्या। ट्रिस्टन डोनोवन ने एक कहानी लिखी है। कैरन लोव हमारी सीनियर प्रोड्यूसर और एडिटर है। इसे एडिट किया है एमली फ्रॉस ने। हमारी एडिटर और प्रोड्यूसर है जेनी लोवर। ओरिजिनल साउंड डिजाइन किया है बे एरिया साउंड ने। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मार्शल लुई। वंडरी से अर्नान लोपेज द्वारा निर्मित।